الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. तो आज की क्लास में हमने वैसे तो आगे की आयात इंशाल्लाह पढ़नी है, कि कल आयत नंबर 11 तक के मारूफ व मसाइल भी हमने पढ़ के मुकम्मल कर लिए थे। अगर किसी को उनके ऊपर कोई सवाल हो या उसके अलावा कोई और सवाल पूछना चाह रहे हो क्लास में, या उनको कहा गया हो कि वो क्लास में पूछ ले सवाल, तो वो फिर अभी चैट विंडो के ऊपर लिख करके अपना सवाल पूछ रहे हैं। हम आगे की आयात पढ़ने से पहले ये इरादा रखते हैं कि आपके सामने ये जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो सूरह मोमिनून की सबसे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कामयाबी की निशानी बताई, सबसे बुनियादी निशानी मोमिनून, राइट, कि वो ईमान वाले होते हैं जो कामयाब होते हैं। ठीक है, तो अब ईमान होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक तो इसकी अहमियत के पेश नज़र कि यही असल है, यही हर चीज़ की बुनियाद है, और जो भी नेकियां हैं, अच्छाइयां हैं, अच्छे इखलाक हैं, या सो कॉल्ड अगर कोई कैफियात भी किसी के अंदर हो गई हैं, तो वो सारी की सारी सिर्फ उस वक्त कबूल होती हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास कि जब के वो ईमान के साथ होती। ठीक है, अगर ईमान नहीं है तो ना तो जाहिरी सुन्नतें, ठीक है ना, ना तो जाहिरी सुन्नतें कबूल होंगी, जिनके अंदर इबादात भी आ गई, जिनके अंदर जो है वो दुआएं पढ़ना भी आ गया, जिनके अंदर जो है वो गुनाहों से बचना, जो जाहिरी गुनाह होते हैं उनसे बचना भी आ गया, है ना, और दाढ़ी उगाना भी आ गया और बुरका पहनना भी, सब कुछ आ गया, ये सारे जाहिरी अमाल हैं, राइट। ना तो जाहिरी अमाल कबूल होंगे और ना जो है वो इखलाक कबूल होंगे, और ना ही जो है वो दिल के अंदर कोई अच्छी अच्छी ख्यालात पैदा हो रहे हैं, बड़ी कैफियात पैदा हो रही हैं, बड़े लोगों की खैरख्वाही हो रही है, बड़ी लोगों के बारे में फिक्र हो रही है कि जी सब कामयाब हो जाए, सब अच्छे हो जाए, सबका मसला हल हो जाए, और सब जो है ये कैफियात दिल के अंदर, ये भी कबूल नहीं है अल्लाह के यहाँ। ठीक है ना, तो असल चीज़ तो ईमान है। तो इस तरह से ईमान का के बारे में जानना जो है ये इंतहाई जरूरी है। अब ये और बात है कि आम हालात में तो एक मुसलमान को ईमान की तफसीलात के जानने की जरूरत नहीं होती। आम हालात में एक मुसलमान के लिए ईमान की तारीफ क्या, डेफिनेशन है, राइट, क्या चीज यानी असल में ईमान है और क्या चीज ईमान को खत्म कर देती है, एक आम मुसलमान को इतनी ज्यादा इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस वजह से बाकायदा जो है वो कोई कोर्स नहीं करवाया जाता ईमान की तारीफ के ऊपर और ईमान को ख़त्म कर देने वाली चीज़ों के ऊपर, कोई कोर्स नहीं करवाया जाता, कोई बाकायदा क्लास के अंदर जो है वो एक इल्मी डिस्कशन नहीं होती। लेकिन हम इस डिस्कशन को क्यों कर रहे हैं, अवामुन नास की क्लास है, ज़्यादातर जो है वो नए लोग ही हैं और अवाम में ही शुमार होता है हम सबका। ठीक है, तो हम इस वाली क्लास को हम इस डिस्कशन को क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उलमाए कराम का मुत्तफिक, तकरीबन सारे उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं, बड़े अकाबिर उलमा की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो सारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम जो है वो फितने दज्जाल के इंतहाई मुश्किल और इंतहाई यानी एडवांस्ड हालात से गुजर रहे हैं। ठीक है ना, हम फितने दज्जाल के जमाने में हैं और फितने दज्जाल का जमाना भी अपनी पीक पर है तकरीबन। ठीक है, तो ये जो फितना है ना, ये है ईमान का फितना कि ये एक एक शख्स को ईमान से महरूम कर देता है फितना। ठीक है, तो इस वक्त जो है ना वो ईमान के बारे में ना सिर्फ ये कि ज्यादा फिक्र करने की जरूरत है, बल्कि फिक्र करने की असल शक्ल क्या होती है कि आप इसके लिए कुछ असबाब भी इख्तियार करें, कुछ तदाबीर भी इख्तियार करें। ऐसी खामखी बैठ करके जो है वो टेंशन लेने से तो फायदा नहीं होता ना। बैठे हुए टेंशन लिए चले जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, अच्छा ईमान चला जाएगा, ईमान चला जाएगा, ईमान का के फितने का दौर है ना, और पसीने छूट रहे हैं और नींद उड़ गई है, और ये इससे तो फायदा नहीं होता ना खाली। भाई इसके बाद आप कुछ अमली इकदाम भी तो करें ना, कुछ आप कुछ कुछ करें भी तो ना इसके सिलसिले में, ठीक है? तो क्या करें इसके लिए? आपको जो है वो कहीं भाग के जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए यानी इस अवेयरनेस की जरूरत है कि ईमान क्या है और किन चीजों से जायल हो जाता है, ताकि आप जो है वो अपने ईमान की हिफाजत कर सकें, अपने औलाद के ईमान की हिफाजत कर सकें, ठीक है? तो इस सारे पस मंजर के साथ और इस नियत के साथ जो है वो हम लफ्ज ईमान की कुछ तहकीक आपके सामने रखना चाहते हैं इस वक्त, ठीक है? नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, फकीहुल वाहिदी फकीहुल वाहिदुन अशद्दु अल शैतानी मिन अल्फ आबिद, कि एक शख्स जो के समझ रखता है, फकीह होता है, राइट, बात की समझ रखता है, गहराई हासिल होती है उसको किसी यानी मौजू की ना, तो शैतान के लिए ऐसे शख्स को बहकाना 1,000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है, 1,000 गुना ज्यादा मुश्किल होता है उस शख्स के मुकाबले में के जो के नेकी के काम तो करता है लेकिन उसको इल्म हासिल नहीं है, समझ हासिल नहीं है, बेसमझी के साथ और बेइल्मी के साथ नेकी के काम कर रहा है, बस उसने तरीका सीख लिया कि हाँ भाई ऐसे नमाज पढ़नी चाहिए, ऐसे जो है वो सबका खैरात करना चाहिए, ऐसे जो है वो लोगों की मदद करनी चाहिए, तो वो करे चला जा रहा है नेकी ये काम, नेकी ये काम, इबादत के काम, राइट, चाहे वो मुसल्ले की इबादत हो, चाहे वो मुआशरे के अंदर इबादत के काम हो, वो करे चला जा रहा है, लेकिन उसको तहकीकात हासिल नहीं है, उसको दकायक का पता नहीं है, ठीक है ना? तो शैतान जो है ना उसके नेकी के काम को बड़ी आसानी के साथ जो है वो जाया कर सकता है, ठीक है? उसको रियाकारी में मुबतला कर देगा, या उसको जो है वो खिलाफ सुन्नत तरीके पे मुबतला कर देगा कि नेकी का काम कर तो रहा है लेकिन सुन्नत के खिलाफ तरीके से कर रहा है, ठीक है ना? लोगों की खैरख्वाही कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है, और इबादतें सजदे कर रहा है, और रुकू कर रहा है, और क्याम कर रहा है, और तिलावत कर रहा है, लेकिन सुन्नत तरीके पे नहीं कर रहा, तो शैतान इस तरीके से भी उसकी नेकी को जाया कर सकता है। फिर शैतान जो है वो उसके अंदर तकब्बुर पैदा करके, उजब पैदा करके, और दूसरे इस किस्म के रूहानी अमराज पैदा करके उसके नेकी के असरात को जाहिर कर सकता है, राइट? तो बहुत सारे तरीके हैं शैतान के लिए कि जिनके जरिए से एक गैर आलिम शख्स की नेकी को जाया कर सकता है, जबकि जब किसी के पास इल्म होता है, समझ होता है ना, तो वो शैतान के हरबों का जो है वो मुकाबला कर सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फकीहुन वाहिदुन अशद्दु अल शैतानी मिन अल्फ आबिदिन। तो अगर हमारे पास भी ईमान की सही समझ होगी और ईमान को जाया कर देने वाले जो 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 हालात होते हैं, मामलात होते हैं, उनकी समझ होगी, तो इस फितने दज्जाल के दौर के अंदर हम अपने ईमान की ज्यादा बेहतर तरीके से हिफाजत कर सकेंगे, ठीक है? तो ईमान की तारीफ क्या है, यहां से हम शुरू करते हैं कि लफ्ज ईमान जो है ना ये अमन से माखूज है, ठीक है? यानी बेखौफ होना, ठीक है? ये तो लफ्ज ईमान की एक छोटी सी तहकीक हो गई। फिर उसके बाद हमने आपको पहले भी बताया हुआ इसी क्लास के अंदर कि इस्तिलाही तारीफ होती है कि भाई किसी किसी शोबे के अंदर ये जो लफ्ज है ना वो किस मानी में इस्तेमाल होता है। तो अब अगर हम दीन का शोबा देखें तो उसमें जो लफ्ज ईमान है उसकी क्या तारीफ बनती है, तो वो आपके सामने हम रखते हैं कि हजरत सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ज्यादा मशहूर हैं, तो इन्होंने ईमान की तारीफ इन अल्फाज में करी है, ठीक है ना? अरबी में तारीफ की है, अपनी तफसीर रूहुल मानी के अंदर इसका जिक्र किया है, जिसका उर्दू तर्जुमा हम आपके सामने पढ़ते हैं कि उन्होंने फरमाया कि ईमान इस चीज का नाम है कि आदमी उन चीजों की तस्दीक करे कि जिनका सबूत आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनी तौर पर मुतहक्कक हो, ठीक है ना? जो बातें नबी अलैहिस्सलाम से साबित है कि हाँ ये वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने ही फरमाई है, ठीक है ना, यकीनी तौर पर साबित हो, तो उन बातों की तस्दीक करे, ये ईमान है, ठीक है? जो चीजें तफसील के साथ साबित और मालूम हो, اس کا تفصیلی طور پر اقرار و تصدیق کرے. کیا مطلب؟ تفصیلی طور پر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بتائیں, تو ان کا تفصیلی طور پر اقرار و تصدیق کرے. کیا مطلب؟ اس کی سب سے بڑی مثال اور بہترین مثال کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا قرآن, اس کے اندر یعنی یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتائی, مسلمانوں کو بتائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے, یہ متحقق بات ہے, کنفرم بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بتایا. بھئی نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور نے تو ہمیں نہیں یہ بتایا نا کہ بھئی وہ اس زمانے میں کوئی اور شخص آیا تھا, اس نے بتایا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. یعنی کیا, واٹ از آور سورس آف نالج؟ اس بات کی نالج کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, نبی علیہ السلام اس کی سورس ہے نا. ٹھیک ہے, اچھا, اب یہ جو قرآن ہے نبی علیہ السلام نے ہمیں کیا صرف یہ بتایا کہ ایک کتاب ہوتی ہے جس کا نام قرآن ہوتا ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے, تم اس پر ایمان لے کر کے آ جاؤ؟ کیا نبی علیہ السلام نے یہ ہمیں بتایا کہ ایک کتاب ہوتی ہے جس کا نام قرآن ہے, تم اس کے اوپر ایمان لے کر کے آؤ کیونکہ وہ اللہ کا کلام ہے؟ یہ بتایا نبی علیہ السلام نے؟ نہیں. ٹھیک ہے, بلکہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تفصیلی طور پر بتایا, صرف اجمالی طور پر, ہائی لیول سپرفیشل نہیں بتایا کہ ایک کتاب ہوتی ہے جس کا نام قرآن ہے وہ اللہ کا کلام ہے تم اس پر ایمان لے آؤ. نہیں, بلکہ ایک ایک آیت نبی علیہ السلام نے بتائی کہ یہ آیات ہیں عربی زبان کے, یہ الفاظ ہیں, یہ جملے ہیں, یہ اس قرآن کا حصہ ہیں, یہ اس قرآن کا حصہ ہیں. ٹھیک ہے نا, اور یہ اللہ کا کلام ہے. کیا مطلب کہنے کا؟ کہ قرآن کے اوپر ایمان لانا یہ صرف اجمالی طور پر ضروری نہیں ہے بلکہ تفصیلی طور پر ضروری ہے. قرآن کی ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا, قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر ایمان لانا کہ یہ لفظ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا ہے نبی علیہ السلام سے بات ثابت ہو گئی کہ ہاں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور پھر اس کے بعد مزید اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ کیا اجمالی طور پر ثابت ہے یا تفصیلی طور پر ثابت ہے. تو قرآن مجید جو ہے وہ تفصیلی طور پر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے, جبکہ تورات اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا. انجیل اللہ کی کتاب ہے, یہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا, لیکن تفصیلی طور پر نہیں کہ انجیل کی ساری جو ورسز ہیں, جو آیات ہیں, جو انجیل کے اندر الفاظ ہیں, وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں, یہ نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا. کیا مطلب؟ کہ اس وقت جو انجیل کی شکل موجود ہے اس میں ہمیں ساری آیات کا نہیں پتا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں یا یہ تحریف شدہ ہیں, یہ بعد میں لوگوں نے تبدیل کر دی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو انجیل کے اوپر ایمان لانا یہ تفصیلی طور پر ضروری نہیں ہے بلکہ اجمالی طور پر ضروری ہے کہ ہاں انجیل اللہ کی کتاب ہے اور بس, تورات اللہ کی کتاب ہے اور بس, تورات کی ایک ایک لفظ ایک ایک آیت کے اوپر ایمان لانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں نبی علیہ السلام سے تفصیلی طور پر ثابت ہیں ان کا تفصیلی طور پر اقرار و تصدیق کرنا, اور جو چیزیں نبی علیہ السلام سے اجمالی طور پر ثابت ہیں ان کا اجمالی طور پر اقرار اور تصدیق کرنا, یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے نا, اب یہ تو ایک آپ کے سامنے مثال رکھ دی قرآن کی اور انجیل کی, تورات کی, رائٹ. دوسری جو ایک زیادہ ہمارے سے ریلیٹڈ ایک اور بھی بڑی مثال ہے, وہ کیا ہے کہ نماز کا حکم اور اس کی رکعات کا حکم, یہ تفصیل کے ساتھ بدیہی اور ضروری طور پر نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. ٹھیک ہے نا, قرآن کی آیات کے اندر نماز کا حکم ثابت ہے کہ نماز پڑھو, پانچ وقت کی نماز کا بھی یہ اوقات ہوتے ہیں نماز کے, لیکن رکعات کی تفصیل کا حکم جو ہے وہ حدیث متواتر کے ذریعے سے ثابت ہے, جو کہ نبی علیہ السلام سے کنفرم کہ ہاں نبی علیہ السلام نے یہ رکعات کی تفصیل بتائی ہے, احادیث کے اندر, متواتر احادیث کے اندر ہمیں یہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب کوئی یہ کہے کہ نہیں ظہر کے اندر جو ہے نا وہ چار رکعات ثابت نہیں ہے نبی علیہ السلام سے, بلکہ جو ہے نا پانچ رکعات ثابت ہے, حدیث متواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ظہر کی چار فرض ہی حکم دیا پڑھنے کے لیے, تو آپ اس کا انکار کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایمان کا انکار کر رہے ہیں, آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات کا انکار کر رہے ہیں, تو آپ مسلمان نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, ظہر کی چار کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں دو رکعت, یا ظہر کی چار کے بجائے آپ کہہ رہے ہیں چھ رکعت. بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چار رکعت ثابت ہیں, آپ اس کو کیسے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا, تو ان کے اوپر تفصیل کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے کہ کتنی نمازیں فرض ہیں اور کتنی رکعت ہر نماز کے اندر فرض. ٹھیک ہے, اسی طرح زکوٰۃ, صوم, حج کا حکم تفصیلی طور پر معلوم اور معروف ہے, ظاہر ہے, کلیئر ہے, اپیرنٹ ہے, آبویس ہے اور یقینی ہے. تو اس وجہ سے زکوٰۃ, صوم, حج پر تفصیل سے ایمان لانا فرض ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے عذاب قبر. عذاب قبر جو ہے نا, اس کا ہونا یہ بھی یقینی طور پر ثابت ہے کہ عذاب قبر ہے. ٹھیک ہے نا, لیکن عذاب قبر کی تفصیلات جو ہیں کہ بچھو کا عذاب ہوگا, سانپ کا عذاب ہوگا, فلاں طریقے سے گرز مارا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا, یہ ساری جو تفصیلات ہیں یہ یقینی طور پر ثابت نہیں ہے. تفصیلات یقینی طور پر ثابت نہیں ہے, بلکہ حدیث جن سے عذاب قبر کی تفصیلات کا پتہ چلتا ہے وہ حدیث جو ہے نا وہ ایک سنگل چین آف نریشن جس کو کہتے ہیں, خبر احاد جن کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان سے ثابت ہیں تفصیلات. تو اس وجہ سے عذاب قبر کے اوپر تفصیلی طور پر ایمان لانا یہ فرض نہیں ہے یا ایمان کا حصہ نہیں ہے, بلکہ اجمالی طور پر عذاب قبر پر ایمان لانا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفصیلی طور پر ثابت ہیں ان پر تفصیلی ایمان لانا, ٹھیک ہے, اور جو اجمالی طور پر ثابت ہیں ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا. اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہم نے رکھی. ٹھیک ہے, اچھا اور تصدیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تصدیق کرنا, تصدیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے باطنی طور پر ان چیزوں کو ماننا, اطاعت کرنا باطنی طور پر, صرف زبانی طور پر نہیں. ٹھیک ہے نا, زبان کے لیے جو ہے نا وہ اقرار کا لفظ استعمال ہوتا ہے, تصدیق کا جو لفظ ہے وہ اندر کے لیے استعمال ہوتا ہے باطنی طور پر, یا جس کو ہم معروف اردو زبان کے اندر دل سے اقرار کرنا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ چیز ہوتی ہے تصدیق. ٹھیک ہے, اب علماء نے اس کے اوپر مثال دے کر کے سمجھایا کہ بھئی دل سے تصدیق جو ہے وہ کیوں ضروری ہے, تو اس کے اوپر ایک مثال دیتے ہیں کہ زبانی طور پر اقرار جو ہے نا وہ بہت سارے لوگوں نے کیا لیکن دل سے تصدیق نہیں کری, تو وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے, وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. جیسے کہ روم کا بادشاہ تھا ہیراکلس, ہیراکل اس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس نے زبانی طور پر اقرار کر لیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں, رائٹ, لیکن دل سے اس کی تصدیق نہیں کری, تو ہیراکل جو ہے نا وہ مسلمان نہیں ہوا, وہ کافر ہی رہا کیونکہ دل سے اس نے تصدیق نہیں کری تھی. ٹھیک ہے, تو یہ تو آپ کے سامنے ایک ایمان کی ایک تعریف رکھ دی. ٹھیک ہے نا, امید ہے کہ یہ تعریف آپ کو یاد رہے گی, کوئی سوال ہے اس کے اوپر تو پوچھ لیجئے. اچھا, اب اس کے بعد چونکہ ایمان کا جو اپوزٹ ہے, رائٹ, اس کی جو ضد ہے وہ ہے کفر. ٹھیک ہے, تو کفر بھی جو ہے نا یہ بھی سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم غلط فہمی کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے نا کوئی ایسا کام نہ کر دیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے, کفر میں تبدیل ہو جائے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے ایک بہت اہم بات جو کہ آپ کو ہم پہلے بھی کلاس میں بتا چکے ہیں وہ یاد رکھنی ہے کہ کافر بننے کے لیے کوئی, یعنی کوئی شخص مسلمان ہے, پیدائشی طور پر مسلمان ہے یا جو ہے وہ کنورٹ ہو کر کے کنورٹ مسلمان ہے, ٹھیک ہے, تو اب وہ مسلمان ہے, ایمان لا چکا ہے, اب اس کے لیے کافر بننے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا, کہ وہ اب کافر کیسے ہو سکتا ہے, ایمان سے محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے فرمایا کہ کافر بننے کے لیے پورے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے, بلکہ کسی بھی ضروری حکم کے انکار سے आदमी इस्लाम से निकलकर काफिर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है कि किसी भी एक बुनियादी अकीदा, जिसको जरूरी अकीदे का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया है, तो किसी एक अकीदे का भी इनकार जो है ना, वो इंसान को इस्लाम के दायरे से खारिज कर देता है। जबकि मुसलमान होने के लिए तमाम अकायद का इकरार करना, ठीक है, तमाम अकायद का इकरार करने से मुसलमान होता है। ये नहीं हो सकता कि कोई शख्स कहे कि आज जो है ना मैं सिर्फ तौहीद का इकरार करता हूं और आखिरत का इकरार जो है ना वो तो मैं कल करूंगा, और फरिश्तों की जो जो मौजूदगी है उसकी तस्दीक और जुबान से इकरार ये जो है ना मैं परसों करूंगा, तो आज मैं जो हूं ना वो मुसलमान हो गया हूँ और कल जो है वो मैं थोड़ा और अच्छा मुसलमान हो जाऊंगा, जब मैं आखिरत की भी तस्दीक कर दूंगा तो मैं और अच्छा मुसलमान हो जाऊंगा, और जब मैं फरिश्तों की भी तस्दीक कर दूंगा तो मैं और अच्छा मुसलमान हो जाऊंगा, यानी ताकतवर, मजबूत और सेहतमंद मुसलमान हो जाऊंगा। लेकिन आज भी मैं मुसलमान हो गया सिर्फ अल्लाह की वहदानियत का इकरार करके मैं मुसलमान हो गया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, कि आप ये कहें कि जी मैं अभी फरिश्तों का इकरार नहीं कर रहा हूं, मैं अभी आखिरत का इकरार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ तौहीद का इकरार कर रहा हूं तो मैं अभी से मुसलमान हो गया, नहीं, आपको हर चीज का इकरार करना पड़ेगा। ठीक है ना, हर चीज का इकरार करके मुसलमान होंगे, या ये कि आप हर चीज का नाम लेकर के अलग अलग इकरार ना करें, बल्कि ये कहें कि जो कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए, जो कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, मैं हर उस चीज का इकरार करता हूं, जुबान से भी और दिल से उसकी तस्दीक करता हूं, आप मुसलमान हो जाएंगे। यानी हर हर डिटेल को स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने डिटेल को ऐसे स्पेल आउट कर दिया, जुबान से कह दिया कि मैं इसका इकरार नहीं करता, मैं उसका इकरार करता हूं, मुसलमान नहीं हुआ। ठीक है ना, तो मुसलमान तो कामिल का इकरार करने से होगा, जबकि काफिर, काफिर के लिए ये नहीं कि भाई मैं सबका इनकार करता हूं तब काफिर होगा, या आधे का इकरार, आधे का इनकार किया तो अभी आधा काफिर हुआ है, अभी जो है वो आधा मुसलमान है अभी तक, क्योंकि इसने जो है ना वो आधे अकायद का इकरार का इनकार किया है, नहीं, आधे अकायद का इनकार करे या एक अकीदे का इनकार करे, पूरा काफिर है, वो टोटल काफिर। ठीक है, तो कुफर के लिए ये बहुत अहम एक यानी एक पॉइंट है जो कि कुफर के बारे में हमें याद रखना है। अच्छा, एक और बहुत अहम पॉइंट लिखा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान की तारीफ में, फरमाया कि तस्दीकु नबी बिमा जाअ बिही बिल एतमाद अला नबी। ठीक है, कि जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम सलाम लेकर के आए उसका तस्दीक करना, उसकी तस्दीक करना नबी अलैहिस्सलाम सलाम पर नबी अलैहिस्सलाम सलाम पर एतमाद करते हुए, है ना, बिल एतमाद अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या खास बात है इस जुमले के अंदर, चले अगर आपसे पूछें ताकि थोड़ी सी इंटरेक्शन भी रहे, इन्वॉल्वमेंट भी रहे ना, आपकी सवाल वाल तो पूछ नहीं रहे आप लोग, ठीक है जी, तो हम ये सवाल पूछ लेते हैं कि इस तारीफ के अंदर क्या अहम पॉइंट है हमारे लिए, कि तस्दीक नबी बिमा जा अभी बिल एतमाद अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, कि एतमाद का होना जरूरी है, ठीक है, मतलब ये तो है ही जाहिर, लेकिन इससे एक यानी इम्प्लाइड चीज क्या निकलती है, बड़ी अहम इम्प्लीकेशन, वो आपसे पूछ रहे हैं। ओ, ओ, सारे मैसेजेस कहाँ से आए? अच्छा, ये इनसे मैं सवाल करता, क्या कुफर करने वाले रिश्तेदारों को फाइनेंशियल हेल्प करना सही है? फाइनेंशियल हेल्प करना जो है वो कुफर, काफिर रिश्तेदारों को फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, काफिरों की फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, ज़कात उनको नहीं दे सकते, और जो सदक़ाए वाजिबा होते हैं, जैसे कल या परसों बताया था कि जब कोई आपने क्या कहते हैं मन्नत मानना या क्या उसके लिए तीसरा लफ्ज़ होता है, तो वो सदक़ाए वाजिबा जो हो जाता है ना वो खाली मुसलमान को दे सकते हैं, लेकिन सदक़ात नाफिला जो है वो गैर मुस्लिम को भी दे सकते हैं, चाहे वो ज़ाहिर का रिश्तेदार है तो फिर ऊला ज्यादा प्रेफर्ड होगा कि आप गैर मुस्लिम रिश्तेदार को सदका नाफिला दें बजाय इसके किसी गैर मुस्लिम नॉन रिश्तेदार को दें। ठीक है, तौहीद के साथ रिसालत को मानना भी जरूरी है, ये भी ईमान का हिस्सा है। दैट ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज गिवन एवरीथिंग दैट इज फ्रॉम अल्लाह। नहीं, इस तारीफ के अंदर जो बहुत अहम नुक्ता हमें पता चलता है ना, वो ये है कि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतमाद यानी रिजालुल्लाह पर एतमाद के बगैर ईमान नहीं है, नहीं ये मुराद मकसद यहाँ पे नहीं था, बल्कि ये है कि जो लोग अकल के जोर पर और अकली दलाइल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तस्दीक करते हैं वो मुसलमान नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पर एतमाद अल नबी नहीं है बल्कि एतमाद अपनी अकल और अपनी दलील पर है। अपनी दलील पर, अब मैंने प्रूफ किया है कि जी इस्लाम जो है वो ठीक है, मेरी अकल कहती है कि इस्लाम ठीक है, इस वजह से मैं मुसलमान होता हूं, ऐसा शख्स मुसलमान नहीं होता। ये है इस तारीफ के अंदर असल फायदा, असल इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, देखें ये एक अलग बात है कि आप नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद करते हुए मुसलमान हो जाएं, ठीक है ना, और उसके बाद आप अपनी अकल को इस्तेमाल करें और अकल को इस्तेमाल करने से दलाइल को देखें, अकल को इस्तेमाल करें और जो है वो किताबें पढ़ें और मुख्तलिफ शवाहिद को देखें, उससे आपका ईमान जो है वो मजबूत हो जाए, आपका ईमान जो है वो यकीन में तब्दील हो जाए। ये एक अलग चीज है, समझे, ये एक अलग चीज है। और ये कहना कि जी मेरी अकल कहती है कि नबी अलैहि के ये जो है ना वो यानी अल्लाह है और फरिश्ते हैं और आखिरत है और यानी तकदीर है, मेरी अकल कहती है इस वजह से मैं इसको मानता हूं, उन सारी बातों को, हाँ इट हैपेंस टू कोइंसाइड, इट मेरी अकल हैपेंस टू कोइंसाइड विद व्हाट द प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम सेड, है ना, द मुस्लिम प्रॉफिट सेड द सेम थिंग, मेरी अकल भी यही कह रही है, तो चलो हम दोनों यानी एक जो है ना वो कोइंसिडेंस हो गया या एक कोइंसाइड हो गया, मेरी अकल के जो कंक्लूजन हैं वो नबी अलैहिस्सलाम वो मुसलमानों के नबी की बातों से भी कोइंसाइड करते हैं, तो मैं मुसलमान हूं, यू नो वेल एंड गुड, राइट। ये शख्स मुसलमान नहीं, ठीक है, ये शख्स मुसलमान नहीं है, ठीक है, बिन देखे नबी अलैहिस्सलाम की बात पे भरोसा कर करके अल्लाह को मान लेना, ये तो जी ईमान की ही तारीफ है। अगर बंदे को ईमान पर शक आए सिर्फ दिल में तो क्या करे, बंदे को ईमान पर शक आए दिल में, ठीक है, तो देखें इसमें ना एक बहुत जरूरी बात यह है कि हमें हमें ये जानना जरूरी है कि शक होता क्या चीज है, शक क्या चीज होती है, ठीक है ना, और आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया ना, बंदे को ईमान पर शक आए सिर्फ दिल में, तो आपके अल्फाज के इस्तेमाल से ये पता लग रहा है यानी इस आजिज का ये गुमान हो रहा है, गालिब गुमान, कि आप दरअसल वसवसे की बात कर रहे हैं, आप जो पूछना चाह रहे हैं ना आप वसाविस का सवाल पूछ रहे हैं कि दिल में वसाविस आए ईमान के ऊपर तो बंदा क्या करे, ठीक है ना, ये वसवसा जो होता है ना यानी एक पैसिंग, वसवसे को आप जरा मॉडर्न इंग्लू लैंग्वेज के अंदर, अंग्रेजी प्लस उर्दू जो हमारी कौमी जुबान है, राइट, तो इसके अंदर आप वसवसे को कैसे डिफाइन करेंगे, एक गुजरता हुआ ख्याल, एक पैसिंग थॉट, ठीक है ना, जो कि आपके सिस्टम में दाखिल हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है, मुस्तकिल सिस्टम के ख्याल आ रहे हैं, ठीक है ना, ये ऐसे नहीं है और अल्लाह है नहीं और अल्लाह को किसने बनाया है और फरिश्ते जो है वो आइंस्टाइन ने तो फरिश्तों की कोई बात नहीं करी और अल्लामा आइंस्टाइन रहमतुल्लाह अलैहिम नाउज बिल्ला है, अल्लामा आइंस्टाइन जो है उन्होंने तो फरिश्तों के बारे में कोई बात नहीं बताई, तो ये कैसे हो सकता है कि फरिश्ते हों और आइंस्टाइन हजरत हजरत आइंस्टाइन को ना पता चला हो फरिश्तों के बारे में, है ना। और न्यूटन साहब जो हैं वो इतने बड़े आइंस्टाइन से भी पहले के थे, उनके बुजुर्ग थे, राइट, जद्द अमजद ऑफ आइंस्टाइन, तो उनको अगर वो उनको कैसे फरिश्ते नजर नहीं आए, है ना। और ये पता नहीं मौली साहब जो है वो मौलाना साहब है ना, जिनको के खाली जनाजे की नमाज पढ़ानी आती है और ये फरिश्ते फरिश्ते करते रहते हैं, तो ये कुछ गड़बड़ है इसके अंदर, ये मुस्तकिल थॉट्स चल रहे हैं आपके जहन के अंदर, ठीक है ना। इनको कहते हैं वसवसे, वसवसे जो कि शैतान जो है वो जहन के अंदर इंसान के डालता रहता है, ठीक है ना। एक चीज होती है शक। शक क्या चीज होती है? शक ये होता है कि जब आपके जहन में ये वसवसे आ रहे हैं ना, तो आप उनमें से किसी एक या एक से ज्यादा वसवसे के ऊपर यकीन कर लें कि वाकई ये जो ख्याल है ना, ये फरिश्ते जो है वो नहीं होते, तो ये सही ख्याल है। हाँ मतलब ये वाकई नहीं, ये हो ही सकता कि फरिश्ते कैसे, मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि फरिश्ते कैसे कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दुनिया के निजाम फरिश्ते चला रहे होते हैं, मेरे तो समझ में ही नहीं आ रही ये बात, ठीक है ना। आप दिल के अंदर इस बात को कंफर्म कर लें, यानी आप इसकी एक तरह से दिल में तस्दीक कर दें कि हाँ ये फरिश्तों का मामला मेरे समझ में नहीं आता, इसको कहते हैं शक। इन दोनों के दरमियान ना फर्क है। वसवसे जो है ना, अच्छा उनकी पहचान एक ये भी है कि वसवसे जो आते हैं ना तो आपको परेशान करते हैं, आप उसके ऊपर ना मुतमइन नहीं होते, आपको एक फिक्र पड़ी होती है कि यार क्या ये मुस्तकिल इस किस्म के ख्यालात चले आ रहे हैं मेरे अंदर, है ना। ये जो अंदर का जज्बा है ना, ये कंफर्म करता है कि ये सिर्फ वसवसा है, शक नहीं है। ये शक तो उस वक्त बनता है कि जबकि आप जो है ना वो उसको कबूल कर लेते हैं और किसी एक चीज के बारे में ना आप फैसला कर लेते हैं कि हाँ भाई ये बस ठीक नहीं है, ये चीज, इसको कहते हैं शक। अभी आपने इनकार नहीं किया है, जुबान से इनकार नहीं किया है इसका, ठीक है ना, लेकिन दिल में आप किसी एक चीज के बारे में जो है ना वो डाउट में मुब्तला हो गए हैं, यू आर लाइक सेटल्ड ऑन इट, यू हैव सैट ऑन इट, ठीक है, इसको शक कहते हैं। शक ईमान को खत्म कर देता है, शक ईमान को खत्म कर देता है, वसवसा ईमान को खत्म नहीं करता, चाहे कितने ही ज्यादा वसवसे आपके दिल में आते हैं ईमान खत्म नहीं होता। तो फिर अब हम करें क्या, ईमान खत्म तो नहीं होता, तो क्या आप वसवसे की फायरिंग रेंज के ऊपर बैठे ने, हर वक्त वसवसे शैतान डाले जा रहे हैं? नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि वसवसे अगर बहुत ज्यादा आते हैं ना तो फिर बहुत खतरे में होता है हमारा ईमान, हमारा ईमान खत्म नहीं होता वसवसों से, लेकिन खतरों में आ जाता है। क्या मतलब, इसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे कि आप बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं और सामने से दुश्मन जो है वो फायरिंग कर रहा है ना भाई, तुम दुश्मन की फायरिंग आ रही है और आप जो है ना वो एक शील्ड के जरिए से अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है ना, तो आप बच तो रहे हैं, आपको उसका जो फायर है वो हलाक तो नहीं कर रहा, क्योंकि आप अपने आप को कोई आपने प्रोटेक्टिव शील्ड रखी हुई है उसके जरिए से अपने आप को बचा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन भाई अगर आप इसी तरीके से फायरिंग रेंज में रहेंगे तो ऐन मुमकिन है कि कोई आपसे गलती हो जाए, छोटी सी भी आपसे कोई गलती हो जाए और गोली आके आपको लग जाए, तो फिर तो आप मर जाएंगे ना भाई, राइट। तो आपको कुछ इंतजाम करना पड़ेगा कि यार मैं फायरिंग रेंज से हटूं, मैं यहां से कहीं 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 ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे दुश्मन का फायर मेरे ऊपर ना आ सके, ठीक है ना। ये कोई थोड़ी है कि शील्ड अपने सामने रख करके मुतमईन होकर बैठे हुए, यहां भी मुझे गोली कोई थोड़ी लग रही, मैं तो हर गोली से अपने आप को बचा लेता हूं, नहीं, वसवसों का इलाज करना पड़ेगा। और वसवसों का इलाज कैसे करना है, जो कि आपके सवाल के जवाब है असल में, वो कैसे करना है कि वसवसे जो आते हैं ना उसकी वजह होती है, ऐसी खामखा वसवसे नहीं आते किसी शख्स को, वजह ये होती है कि हमारा जो दिमाग होता है ना वो या तो खाली होता है, बेकार, फारिग, राइट, कोई कोई पॉजिटिव काम करने को है नहीं हमारे पास, कोई पॉजिटिव सोच हमारे पास है नहीं, है ना, वक्त अपना जो है वो ऐसे ही बस उड़ा रहे हैं अपना वक्त। तो भाई जो एम्प्टी माइंड होता है वो तो डेवल्स वर्कशॉप होता है ना, और डेवल्स वर्कशॉप क्या, डेवल उसके अंदर वसवसे डालता रहता है। तो भाई इसका हल ये होता है कि अपने माइंड को जो है ना वो मसरूफ करें पॉजिटिव चीजों के अंदर, अच्छी चीजों के अंदर, ठीक है ना। जब आप मसरूफ हो जाएंगे तो फिर दिमाग में वसवसों की गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है ना, गुंजाइश छोड़े नहीं शैतान के लिए अपने दिमाग के अंदर। दूसरी चीज ये है कि इल्म हासिल करें, ठीक है ना, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं इल्म हासिल करके। जब इल्म हासिल हो जाएगा ना, तो शैतान के लिए वसवसे डालना मुश्किल हो जाएगा आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास जवाब होंगे उसके वसवसों के ना, ठीक है ना। तो ला इल्मी जो होती है ना, ये भी वसवसों का सबब बन जाती है, और फारिग रहना ये ज्यादा बड़ा सबब बन जाता है वसवसों का, ठीक है। क्या नफ्स हमारा सिर्फ इल्म हासिल करके दूर हो सकता है, या इसका कोई और इलाज भी है? नहीं, नफ्स हमारा सिर्फ इल्म हासिल करके तो दूर नहीं होता ना, नफ्स हमारा के लिए तो खैर, नफ्स हमारा दूर नहीं होता, दूर करने वाली ये चीज नहीं है, नफ्स हमारे अंदर हमारा हिस्सा है, ठीक है ना, हम अपने किसी हिस्से को काट के अलग नहीं कर सकते ना। तो नफ्स हमारा को दूर नहीं करना होता, बल्कि नफ्स हमारा को नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील करना होता है, ठीक है। तो नफ्स मुतमइन्ना में तब्दील करने के लिए जो है ना, वो इस्लाह का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि इस नफ्स के अमारापन को जो है वो खत्म कर देता है, इसको कमजोर कर देता है, ताकि ये जो है ना वो सेटल डाउन हो जाए, मुतमईन होकर के बैठ जाए, ठीक है ना, इसी को नफ्स नफ्स मुतमईना कहते हैं। तो ये इस्लाह का जो प्रोसेस होता है ना, तस्किया नफ्स का, ये प्रोसेस इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है ना। इस प्रोसेस के अंदर जरूरी इल्म हासिल करना भी शामिल होता है, और इस प्रोसेस के अंदर यानी अपनी मैं को मिटाना, जैसे कल आखिरी बात हुई थी क्लास के अंदर, मैं को मिटाना, अपने नफ्स को जो है वो मारना, ठीक है, शरीयत और सुन्नत के का अपने आप को पाबंद बनाना, अल्लाह ताला का कसरत के साथ जिक्र करना, नेक लोगों की सोहबत में को इख्तियार करना, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो इस प्रोसेस का हिस्सा होती हैं। इस प्रोसेस के थ्रू जब इंसान गुजरता है, तो फिर उसका नफ्स अम्मारा नफ्स मुतमैना से तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो अपनी अकल पर एतमाद करते हुए नहीं, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद करते हुए। हाँ, अकल का इस्तेमाल वहां पर इस हद तक होता है, इस हद तक होता है कि नबी अलैहिस्सलाम सच्चे हैं और अमानतदार हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जो 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 जिंदगी है, जो आप का माजी है, जो आप के ऊपर जो कि सच्चाई के ऊपर जो दलाइल हैं, उन दलाइल को अपनी अकल से देखना, अपनी अकल इस्तेमाल करके उन दलाइल को के ऊपर गौर करना, ताकि आप इस नतीजे पे पहुंच जाए कि नबी अलैहिस्सलाम सादिक और अमीन हैं, ठीक है ना। यहां तक पहुंचने के लिए अकल इस्तेमाल करनी, नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने के लिए अकल इस्तेमाल करनी पड़ती, ठीक है। वो अकल का इस्तेमाल है नबी अलैहिस्सलाम पर एतमाद के, जबकि जो हम बात कर रहे थे कि अकल पर एतमाद करते हुए चीजों की तस्दीक करना, वो एक अलग बात थी, वो नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक नहीं थी, बल्कि वो डायरेक्ट अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की तस्दीक और आखिरत की तस्दीक और फरिश्तों की तस्दीक और तकदीर की तस्दीक और अपनी अकल की बुनियाद पर, हाँ जी ऐसे होता है वाकई, जो बुरा काम करता है तो उसको कोई ना कोई तो यानी उसको सजा तो मिलनी चाहिए ना, अब सजा जो है ना वो दुनिया में तो मिल नहीं सकती, तो कोई ना कोई एक ऐसा जहान भी होगा कि जहां पर जो है ना वो सजा मिले, जैसे किसी डिक्टेटर ने जो है वो लाखों लोगों को मार दिया, अब उसके नतीजे में उसको सजा तो एक दफा ही कत्ल होकर के मिल सकती है ना, तो बाकी जो लाखों लोग हैं जिनको कि इसने मारा, जिनके घरों को उजाड़ा, उसकी सजा उसको कैसे मिल सकती है इस दुनिया के अंदर, तो यकीनन कोई दूसरी दुनिया होगी जहां पर इसको सजा मिलेगी। तो ये क्या है, अकल की बुनियाद पर आखिरत तक पहुंच गए, यहां भी आखिरत है, अकल पर एतमाद करके, हाँ भी मेरी अकल कहती है कि ये तो आखिरत के बगैर तो सिस्टम ही नहीं चल सकता, इस वजह से मैं आखिरत पर एतमाद करता हूँ, राइट। और इस वजह से अब सोचना शुरू कर दे कि अगर एक से ज्यादा खुदा होते तो, अब एक से ज्यादा खुदा होते तो खुदाओं के दरमियान लड़ाई हो रही होती, तो लड़ाई हो रही होती तो फिर दुनिया के अंदर फसाद होता, तो इस वजह से मैं मानता हूँ कि एक ही खुदा है, राइट, मेरी अकल कह रही है कि एक ही खुदा है, यानी इट्स कॉमन सेंस कि एक खुदा है, इस वजह से मैं एक खुदा के ऊपर यकीन रखता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम को साइड पर रख दिया इसने, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کی اہمیت نہیں ہے، اپنی عقل کی اہمیت ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اچھا تو یہ تو ہو گیا جی ایمان کی ایک اور تعریف، کہ اپنی عقل اور اپنی دلیل کے اوپر اعتماد نہیں بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اعتماد۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک تعریف جو تھوڑی سی اور ایک اور انداز سے کی جاتی ہے وہ کیا، کہ ایمان جو ہے نا وہ ہاں ایک بہت اہم تعریف، تصدیق النبی بما جاء به مع التبرع عن جميع ما سواه، عن جميع ما سواه، یہ اس دور کے حساب سے بڑی اہم تعریف ہے اس دور۔ ٹھیک ہے، آج سے کچھ پہلے کے دور کے لیے جو بہت اہم تعریف تھی وہ والی تعریف تھی، عقل پر اعتماد والی تعریف۔ ٹھیک ہے نا، وہ اس کی تفصیل الگ ہے، لیکن اس وقت رائٹ ناؤ جس دور کے اندر ہم رہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور، فتنہ دجال کا دور، اس دور کے لیے یہ تعریف سب سے اہم ہے۔ وہ کیا ہے کہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تصدیق کرنا، جو وہ چیز لے کر کے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کی تصدیق کرنا، مع التبرع عن جميع ما سواه، ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ جو کچھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لائی ہوئی باتوں کے علاوہ جو کچھ ہے، کیا مطلب، جو دوسرے عقائد ہیں، رائٹ، جو دوسرے ادیان ہیں، ان سے بیزاری رکھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آج یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اقرار کرتا ہے، دل سے تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ کفر سے بیزار نہیں ہے، وہ کفر اور کافری سے تبرع نہیں کرتا، ان کو برا نہیں سمجھتا، ان کو غلط نہیں کہتا، وہ کہتا ہے ادیان سب اچھے ہیں، سب پیار و محبت کی تدریس کرتے ہیں، رائٹ، اور یہ جو مسئلہ ہے نا یہ ایمان نہیں ہے، کیونکہ آپ دوسروں کا انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا، دوسروں کا سے بیزاری نہیں کر رہے، انکار اور بیزاری، دل سے بیزاری بھی، ٹھیک ہے، اور یہ چیز جو ہے وہ آج کل بہت آرگنائز طریقے سے یہ پھیلائی جا رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، بڑوں میں اور ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے سے چھوٹے چھوٹے بچوں میں دوسری کلاس میں پڑھائی جانے والی ایک کتاب، اردو کی کتاب جو پاکستانی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب کے الفاظ دوسری جماعت کی کیا لکھتے ہیں، ایک کہانی نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بچوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی، مسلمان اور غیر مسلم بچوں میں لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، تو اب ٹیچر آ کر کے ان کے لڑائی کو ختم کروا رہا ہے اور کہہ کیا رہا ہے کہ ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہتے، ہاں بھی برا کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، کسی کافر کو کھڑا کر کے آپ اس کے مذہب کو برا کہنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آگے سنیں، ٹیچر یہ کہتا ہے یا کہتی ہے کہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا نہیں کہتے، کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی، کیونکہ ہر مذہب آپس میں محبت اور دوستی کو سکھاتا ہے، رائٹ، ہر مذہب جو ہے وہ آپس میں محبت اور دوستی کو سکھاتا ہے، مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن پاک میں بھی یہی لکھا ہے۔ اب اس کو آپ دونوں طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، بھائی دوسروں کے مذہب کو یعنی دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا، رائٹ، دوسروں کے خداؤں کو، لیکن یہ کو تھوڑی کہا نبی علیہ السلام نے یا قرآن نے کہ بھئی کافروں کا مذہب بھی اچھا ہے، ان کے مذہب کو بھی اچھا سمجھنا شروع کر دو، ہندو مذہب کو یا عیسائی مذہب کو یا یہودی مذہب کو بھی تم اچھا سمجھنا شروع کر دو، رائٹ، یہ کو تھوڑی ہمارے دین کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے، رائٹ، بلکہ کافروں کے لیے تو جہنم ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم، بھائی یہ کس قسم کی آپ کیا کہتے ہیں آکسیمورون قسم کا آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ قرآن پہ میں یقین رکھتا ہوں اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جی کافر جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، اور دوسری طرف آپ یہ کہنے کہ نہیں جی دے آر ویری نائس، یعنی دیئر ریلیجن از آلسو ویری نائس، बिकॉज वट एवर इट टीचेस जो है वो पीस एंड हार्मनी एंड ट्रैंक्विलिटी अमंग ह्यूमन बीइंग्स, राइट? मतलब वट वट काइंड ऑफ एन ऑक्सीमोरॉन यू आर, वट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना? तो इस तरीके से जो है वो बच्चों को बहुत बहुत ही छोटी उम्र से ऐसी जहन साजी कर रहे होते हैं कि उनके दिल से तबर्रा अंजमी सवाहु खत्म हो जाए, ठीक है? इस कॉन्सेप्ट को किसी ने सवाल किया है कि इस कॉन्सेप्ट को इस बात से कैसे रिलेट करें कि काफिर से नफरत नहीं करनी, कुफर से नफरत जरूरी है। हाँ, तो हम यहाँ पे किसकी बात करें? काफिर से नफरत की तो बात नहीं कर रहे, हम तो कुफर से नफरत की बात कर रहे हैं ना। यानी जो कुफर के अधियान है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और माजियनिज्म, जो भी दूसरे दूसरे रिलीजन है, उससे नफरत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? काफिर से नफरत की बात नहीं कर रहे। काफिर से नफरत की बात, अच्छा, काफिर से नफरत का मतलब क्या होता है? अब ये नफरत का मतलब क्या है, ये भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि उसके बगैर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते। देखिए, नफरत क्या चीज होती है? नफरत वो चीज होती है कि आप उसको बर्दाश्त ना कर सके किसी, यानी आप उसको जो है ना वो यानी आप उसकी शक्ल ना देखना चाहते हो, आप उस यू कैन नॉट स्टैंड इट, ठीक है ना? आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसको कहते हैं नफरत, ठीक है? अब देखें, कुफर को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, कुफर को हम कबूल नहीं कर सकते, कुफर कुफर के साथ यानी ये जो बातिल अकीदे हैं, हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि हाँ भाई थोड़ा तुम थोड़ा मैं, थोड़ा वो ठीक है थोड़ा इस्लाम सही है, नहीं, बल्कि قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, है ना? यानी इस तरीके का, ये कुफर के साथ है, जबकि काफिर के साथ क्या मामला है? काफिर के साथ हम नफरत करते हैं। अगर हम काफिर से नफरत करें, जैसे किसी शख्स का नाम है डेविड, हम डेविड से नफरत करें, तो इस नफरत का मतलब ये होगा कि नो मैटर व्हाट, हमने डेविड से नफरत ही करनी है, नहीं? हम डेविड को स्टैंड नहीं कर सकते, हम डेविड से जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, हम डेविड से जो है वो, हालांकि ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना? डेविड के साथ तो आप बहुत अच्छा मामला कर सकते हैं, मदारात कर सकते हैं, मामलात कर सकते हैं, आप कारोबार कर सकते हैं, उसकी मेहमान नवाजी कर सकते हैं, उसके साथ जो है वो, जैसे अभी पीछे सवाल हुआ कि आप उसको सदका खैरात दे सकते हैं, उसकी मुश्किल में मदद कर सकते हैं, तो भाई जिसके साथ नफरत होती है आप उसके साथ ये सारे काम करते हैं? आप तो उसके साथ ये सारे काम कर ही नहीं सकते, राइट? तो भाई हमें डेविड से तो नफरत नहीं है, हमें तो डेविड के अंदर के अकायद से नफरत है। अच्छा, उन अकायद की मौजूदगी में भी हम उसके साथ ये अच्छे अच्छे मामलात करते हैं, ठीक है ना? और फिर बेशक हम उससे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन नफरत भी नहीं करते डेविड से, ठीक है ना? तो हम उसके साथ तो इतने अच्छे मामलात कर रहे हैं, और फिर उससे आगे बढ़ करके हम डेविड के बारे में फिक्रमंद हैं कि डेविड साहब अपने कुफ्रिया अकायद से तौबा कर लें, राइट? ताकि वो जहन्नुम में जाने से बच जाए। भाई ये जो जज्बा है कि वो जहन्नुम में जाने से बच जाए, क्या आप ये जज्बा किसी ऐसे शख्स के बारे में रख सकते हैं जिससे आपको नफरत हो? जिससे नफरत होती है उसको तो इंसान चाहता है कि ये जहन्नुम में जाके हमेशा हमेशा के लिए मरे और जले, राइट? जिससे नफरत होती है, तो डेविड से तो हमें नफरत है ही नहीं, हम तो उसके लिए खैर ख्वाही कर रहे हैं, हम तो उसके लिए फिक्रमंद हैं। और जूं ही वो अपने कुफ्री अकायद से तौबा कर लेगा, हम डेविड को, अगर हम भी मर्द हैं वो भी मर्द है, हम उसको गले लगा लेंगे, राइट? हम उसको गले लगा लेंगे, हम उसको अपना भाई बना लेंगे, हम उसको बोसा देंगे, जैसे अरब अरब लोग मर्द एक दूसरे को बोसा देते हैं। तो भाई डेविड से तो नफरत किसी सूरत भी ना हो ना, तो काफिर से तो नफरत है ही नहीं, सारा का सारा मसला कुफर के साथ है। डेविड के ऊपर तो बस एक कंडीशन आई हुई है, उस कंडीशन की वजह से हम उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, लेकिन नफरत भी नहीं कर रहे और ना कर सकते हैं उससे नफरत, ठीक है ना? वो कंडीशन दूर हो जाएगी, वी आर इन लव विद डेविड, राइट? बात समझ में आ रही है ना? कुफर से नफरत करना क्या चीज होती है, और काफिर से नफरत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है? बैनुल मजाहिब हमांगी का नाम लेकर कल्चरल डे मनाए जा रहे हैं, हिंदुओं और ईसाइयों के अहम दिनों पर स्कूल कॉलेजेस में आजकल, ठीक है ना। तो ये हिंदुओं और ईसाइयों से मोहब्बत नहीं हो रही, ये उनके दीन से मोहब्बत के तरीके राइज किए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे मुसलमान बच्चे हैं उनके दिलों से उनके दीन की नफरत खत्म हो जाए, ठीक है ना भाई। देखें ये दजल और फरेब जो होता है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज होती है। इसको जो है ना वो ऊपर से इस तरह से यानी लिबादा उड़ाया जाता है, अच्छाई का लिबादा उड़ाया जाता है, लेकिन असल में अंदर जो है ना वो दूसरे मकसद से चल रहे होते हैं। इसी को तो दजल कहते हैं ना, ऊपर से अच्छी बात लगती है, अंदर से वो गलत बात होती है। तो इसी वजह से ना बहुत लोग कंफ्यूज हैं इस बारे में कि जी ईसाइयों के ये से नफरत, तो हमारा दीन उसके खिलाफ है, तो फिर क्यों जो है वो क्रिश्चियनिटी के बारे में बुरी बात करते हैं और क्या। भाई इसकी वजह ये होती है कि हम बहुत ही सुपरफिशियल हैं, हम सिर्फ जाहिर को देखते हैं, हमें हमें यानी चीजों की हकीकत तक हम नहीं पहुंच पाते ना, हमारे पास वक्त नहीं होता, हम जो है वो अपने खेल कूद और हल्ला गुल्ला के अंदर इतने मसरूफ होते हैं कि हम जो है वो कुरान की हकीकत को समझ नहीं समझ पाते हैं, नहीं उसकी समझ उसकी इल्म हासिल करते हैं, और ना जो है वो अकायद का इल्म हासिल करते हैं। तो इस वजह से हम कंफ्यूज ही कंफ्यूज सारी जिंदगी गुजार रहे हैं, और इस कंफ्यूजन के अंदर ही जो है ना फिर हमारा ईमान खत्म हो जाता है, हम कुफर को जो है वो अच्छा समझना शुरू हो जाते हैं, एंड दैट किल्स आवर ईमान, खत्म हो जाता है हमारा ईमान, ठीक है। इन चीजों के ऊपर वक्त लगाएंगे तो फिर ये बात हो जाएंगी, वरना ईमान से महरूम हो जाएंगे हम भी और हमारी औलादें भी, और फिर उसके बाद आप नमाजें दें, धनादन नमाजें पढ़ते हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इफ किड्स आर आस्किंग एनीथिंग अबाउट क्रिश्चियंस एंड वी से इट्स ओके इन देयर रिलीजन नॉट फॉर अस, सो लीव दैट, इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग? इट इज ओके इन देयर रिलीजन, तो जाहिर है इसमें आप ये तो नहीं कह रही कि इट इज ओके एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली ओके का मतलब है कि हाँ ये चीज सही है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसी चीज थी जिससे कि दीन इस्लाम के अकायद का इनकार होता है और उसको आपने कह दिया कि हाँ ये बात सही है, तो फिर ये कुफ्री अकलमा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने ये कहा है कि भाई उनके दीन में ये चीज सही है लेकिन ये चीज सही नहीं है, जैसे शराब पीना, शराब पीने की इजाजत इस क्रिश्चियनिटी के अंदर है, राइट। ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में शराब जायज थी, हत्ता के नबी अलैहिस्सलाम के इब्तदाई दौर में शराब जायज थी, ठीक है ना। तो आप बच्चों को ये बता सकते हैं कि उनके दीन में ये चीज जायज है लेकिन है ये हराम, अल्लाह ताला ने इसको हराम कर दिया, ठीक है। तो इससे फिर यानी आपके ईमान के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, ये आप एक 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 सब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन दे रहे हैं अपने बच्चों को, ठीक है। काफिर के लिए हिदायत की दुआ मांगनी जा सकती है, क्यों नहीं भाई, सारी दुनिया के काफिरों की हिदायत की दुआ मांगे, जरूर मांगे, चाहे अपने खानदान का कोई बंदा काफिर है, काफिर हो गया है, या सारी दुनिया के काफिर हैं, भाई यही तो करना है हमने, और क्या करना है, काफिरों के हिदायत के लिए दुआ करनी है, ठीक है। दुआ करने के बाद फिर अगर कुछ मुमकिन है तो दुआ भी करनी है। अच्छा, तो ये जो है ना ईमान की तारीफ से मुतालिक सुन बातें आपके सामने करी हैं, कुफर के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि बताने का दिल तो चाहता है, लेकिन अभी वक्त भी कम है और एक दो सवाल भी हैं जिनको कि हमने एड्रेस करना है, ठीक है। तो वो बाकी टाइम उसमें निकल जाएगा। तो किसी से हमने कहा था कि उन्होंने जो डायरेक्ट सवाल भेजा है उसको क्लास के अंदर भेज दें, तो उन्होंने ऊपर जो है वो अपना सवाल नकल कर दिया है। तो वो पूछना ये चाह रही थी कि अकॉर्डिंग टू ए हदीस, यानी उन्होंने एक हदीस नकल करी है कि जब हम उम्रा करते हैं और हज करते हैं, ठीक है, तो हजरत अबू हुरैरा ने 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 फरमाया कि उम्रा और हज करने से जो है वो गुनाह माफ हो जाते हैं, ठीक है। तो सवाल ये है इनका कि जो फर्ज सलात मिस करी है किसी ने ना, तो नमाजों को छोड़ना या नमाजों का तर्क करना जो था ये गुनाह था, रोजों का तर्क करना ये भी गुनाह था, ठीक है, तो हज और उम्रा करने के बाद क्या ये गुनाह भी माफ हो जाते हैं, राइट। किसी ने नमाज छोड़ दी, किसी ने रोजा छोड़ दिया, तो हज उम्रे के बाद ये गुनाह भी माफ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर उन्होंने एक और हदीस जो है वो नकल करी थी, वो ये थी कि अबू हुरैरा से मरवी है कि नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका के तर्जुमा मफहूम ये बनता है कि एक उम्र से के बाद दूसरा उम्र, वो इन दोनों उम्रों के दरमियान गुनाहों का कफारा बन जाता है, और एक हज मबरूर जो होता है वो एक सुप्रीम एक्शन है, यानी एक बहुत अफजल एक्शन है, उसका जो 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 उसकी जजा है वो जन्नत है, हज मबरूर की जजा जन्नत है। ठीक है, तो अब सवाल ये कि इस हदीस से मुताल्लिक सवाल है कि क्या हज मबरूर के बाद वो फर्ज नमाज जो हमने कजा की होती हैं क्या वो भी माफ हो जाती हैं, और कजा रोजे। ठीक है, तो हदीस में तो है कि जी सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, तो फिर नमाजें भी जो आपने कजा करी है वो भी माफ हो जाती हैं, और जो रोजे जो कजा किए हैं वो भी माफ हो जाते हैं। तो फिर कजा, यानी इनके सवाल के अल्फाज तो ये नहीं है, लेकिन पहले भी ये सवाल चूंकि कर चुकी हैं, इस वजह से ये आज खुद से थोड़ा सा फिल कर रहा है कि यानी कजा रोजे रखने की क्या जरूरत है, राइट, या कजा नमाजें पढ़ने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो चूंकि कजा यानी नमाज छोड़ना जो है वो गुनाह था, और गुनाह जो है वो उम्रों से माफ हो जाते हैं, और हज मबरूर अगर हो जाए तो फिर तो जी माशाल्लाह आप जन्नत में चले जाएंगे, हदीस मुबारक यही अल्फाज है, तो फिर क्या जरूरत है सब कजा वजा करने की। ठीक है, तो इसका क्या जवाब है, तो देखें पहली बात तो ये है कि ये जो हदीस मुबारक आपने नकल करी है ना, तो इस हदीस मुबारक में जो ये फरमाया गया कि एक उम्र और दूसरे दरमियान के उम्र के दरमियान के गुनाहों का कफारा बन जाते हैं ये उम्र, ठीक है ना, तो जिस तरह से ये एक हदीस है ना उम्रों के बारे में, तो उसी तरीके से और भी हदीसें हैं, जैसे कि जुमे की नमाज के बाद, कि एक जुमे से दूसरे जुमे के दरमियान गुनाह जो है वो माफ हो जाते हैं, ठीक है ना, तो इस तरह की कई हदीसें मौजूद हैं कि जिनकी वजह से जिनके अंदर ये पता चलता है कि ये वाले अमान कर लेने से गुनाह माफ हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बहुत सारी दूसरी अहादीस और कुरान की आयात से जो फिका हासिल होती है ना, फिका यानी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द दीन, ठीक है, तो उस फिका के तहत के उस यानी वो फिका ये है, वो समझ ये है कि यानी समझ लें कि इन हदीसों की तशरीह वो ये है कि ये जो गुनाह माफ होने की बात की जा रही होती है इन हदीसों में, ये गुनाह गुनाह सगीरा होते हैं, ये गुनाह कबीरा नहीं होते, ठीक है, जो कि इन आमाल की वजह से माफ हो जाते हैं, जैसे जुमे की नमाज वाला अमल हुआ, या उम्रों वाला अमल हुआ, या हज मबरूर वाला अमल हुआ, इन आमाल की वजह से गुनाह सगीरा माफ हो जाते हैं, गुनाह कबीरा माफ नहीं होते, ठीक है, गुनाह कबीरा जो है वो सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर फिर दलाइल मौजूद है हदीस मुबारक के। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि गुनाह सगीरा की बात हो रही है, गुनाह कबीरा की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो ये जब थोड़ा सा और डीप डाउन जा करके हदीसों को पढ़ना शुरू करते हैं ना, तब पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अल्फाज की तशरीह होती है जो कि फिर हमें दूसरी जगहों से पता चलती है ना, कि भाई यहाँ पर जो है ना वो इन अल्फाज में कुछ फीलिंग्स करनी पड़ेंगी जिससे कि फिर कॉन्ट्रडिक्शन खत्म होगी, अदरवाइज हदीसों के दरमियान कॉन्ट्रडिक्शन रहेगी, इख्तिलाफ रहेगा। ठीक है, तो इख्तिलाफ को रफा करने के लिए फिर आपको ब्रॉड पिक्चर देखनी पड़ती है, और उससे फिर इख्तिलाफ रफा होता है, पता चलता है कि यहाँ पे जिन गुनाहों के माफ होने की बात हो रही है गुनाह कबीरा है ही नहीं है, तो गुनाह सगीरा है। ठीक है, तो इन्होंने फिर एक और चीज लिखी है कि एक जगह ये भी पढ़ा है कि हज के बाद इंसान न्यू बॉर्न जैसा हो जाता है, न्यू बॉर्न पर तो फर्ज नहीं होते। जी, हज के बाद इंसान जो है वो न्यू बॉर्न जैसा हो जाता है ना, तो न्यू बॉर्न के ऊपर जो है वो किसी का कर्ज होता है, ये जो न्यू बॉर्न साहब है ना, जो कि हज के बाद न्यू बॉर्न हुए हैं, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के इरशाद के मुताबिक न्यू बॉर्न हुए हैं ना, अब इन्होंने ना किसी बंदे से जो है वो कर्ज लिया हुआ था 1 लाख का, ठीक है। तो अब जो इसने कर्ज लिया हुआ था, तो अब इसको वो कर्ज अदा करना चाहिए भाई, ये तो न्यू बॉर्न हो चुका है, और न्यू बॉर्न के ऊपर जिस तरह से आपके हिसाब से गुनाह नहीं रहते, ठीक है ना, तो उसी तरीके से न्यू बॉर्न के ऊपर तो कर्ज भी नहीं होते भाई, ये तो न्यू बॉर्न हो गया। तो अब जो है ना, इसको जाकर के उन साहब को एक अंगूठा दिखाना चाहिए, ठेंगा जिसको कहते हैं हमारी जुबान में, कि भाई मैं न्यू बॉर्न होकर के आया हूँ, और देखो ये दलील हदीस मुबारक मेरे सामने, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ हदीस, न्यू बॉर्न हो चुका हूँ, अब खबरदार तुमने मुझसे कर्ज मांगा, मैं न्यू बॉर्न हो चुका हूँ, न्यू बॉर्न के ऊपर कोई कर्ज नहीं होता, ठीक है ना भाई। तो उसकी ये दलील मान ली जाएगी कि न्यू बॉर्न के ऊपर कर्ज नहीं होता, और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि न्यू बॉर्न हो चुके हो, अब जो है मैं कर्ज अदा नहीं करूंगा। तो भाई ये ऐसे नहीं बात बनती है ना, इसी वजह से भाई फकीद होता है ना, वो एक अलग चीज होता है, फकीद ऐसे नहीं अल्फाज की बुनियाद पर वो चीजें अज्यूम नहीं कर लेता ना, उसके पास एक डिटेल नॉलेज होती है ना, वो बताता है कि नहीं ऐसा नहीं है, न्यू बॉर्न होने का मतलब नहीं है कि आपके ऊपर से कर्ज खत्म हो गए। न्यू बॉर्न नबी अलैहिस्सलाम उसकी फजीलत बयान फरमा रहे हैं कि अच्छा हज कर लेने से जो है वो इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं, पाकीजा हो जाता है, लेकिन वो असलन न्यू बॉर्न नहीं होता कि जिसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, नहीं उसके ऊपर जिम्मे रहती हैं चीजों की, ठीक है, जिम्मा रहता है चीजों का, क्या सच सारे हज और उम्र कबूल होते हैं? नहीं, अगर शराइत पूरी होंगी तब कबूल होते हैं, और अगर शराइत पूरी नहीं होती तो कबूल नहीं होते, ठीक है। और वो शराइत का टॉपिक जो है वो एक अलग ही टॉपिक है। तो एक तो जवाब ये हो गया इसका जी, कि यानी ये जो हदीसों के अंदर गुनाह माफ होने की बात हो रही है, ये सगीरा गुनाहों की बात हो रही होती है, ये कबीरा गुनाहों की बात हो ही नहीं रही होती। और न्यू बॉर्न की भी जो जो कॉन्सेप्ट है ना, तो न्यू बॉर्न का भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सगीरा गुनाहों से न्यू बॉर्न वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल फिजिकली और एब्सोल्युटली और विद ऑल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एक शख्स जो है वो न्यू बॉर्न हो गया, ये मुराद है ही नहीं उस हदीस के, ठीक है, ये मुराद है ही नहीं। तो न्यू बॉर्न के लफ्ज से जो है ना वो ये दलील नहीं दी जा सकती है, ठीक है, कि सब कुछ माफ करवा करके ना अब आगे से जिम्मेदारियां खत्म हो गई इस शख्स के ऊपर, अब जो है वो नए सिरे से चोरी करना शुरू करेगा, जैसे कि वो लतीफा है कि दुकान के अंदर जो है ना वो दुकानदार बैठा हुआ देख रहा है कि एक साहब आए, और आ करके उन्होंने वहां से शेल्फ के ऊपर से एक चीज उठाई और अपनी जेब में डाल ली, ठीक है, यानी चोरी करने के लिए जिस तरह से एक बंदा उठाता है ना और जेब में डाल लेता है चीज को, तो वो बैठे हुए दुकानदार ने उसे कहा, ओ हाजी साहब क्या कर रहे हैं आप? तो इसने कहा, भाई मैंने तो जेब में डाली, गलती हो गई, लेकिन तुम ये बताओ कि तुमने मुझे हाजी साहब क्यों कहा, तुम्हें क्या पता कि मैं अभी हज करके आया हूँ? उसने कहा, भाई हज करने के बाद जो है ना बंदा ऐसे ही सोचता है कि बस अब तो पुराने सारे के सारे खत्म हो गया, मैं फिर से करूंगा तो ज्यादा मसला नहीं होगा, कुछ गुना कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि पुराने तो मैं माफ करवा के आ गया हूँ। तो ऐसा नहीं होता ना। किसी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, मैं जरा खतरनाक किस्म की बात हम लोगों के लिए, वो क्या है कि काबतुल्ला के गिर्द चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते, है ना, काबतुल्ला के गिर्द चक्कर लगा लेने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते, ठीक है ना, ये हमारे जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, जाके चक्कर लगा के आ जाओ, और पुराने चक्कर अब खत्म, अब नए चक्कर देना शुरू करूंगा मैं लोगों को, नया धोखा देना शुरू करूंगा, नए झूठ बोलना शुरू करूंगा, ये ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। अच्छा, बहरहाल दूसरी चीज ये है कि कजा नमाजें अदा करना, इसके ऊपर बाकायदा हदीसें मौजूद हैं, कजा नमाजें अदा कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में गज़वाए खंदक के मौके के ऊपर नमाजें छूट गई थी, तो उन नमाजों की कजा की गई थी, और भी दूसरे मौके ऐसे थे कि जिनके ऊपर नमाजें कजा हुई थी उनके ऊपर नमाजें कजा की गई थी, ठीक है ना। तो कजा नमाजें जो हैं, यानी नमाज छूट गई तो अब उसके ऊपर ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मुझे गलती हो गई, आइंदा कजा नहीं करूंगा, है ना, ये हो गई तौबा, आइंदा कजा नहीं करूंगा, गलती हो गई माफ कर दे, नादिम हूं शर्मिंदा हूं, तौबा कर ली, ठीक है ना, कजा नमाज अब दोहराने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब नबी अलैहिस्सलाम से एक बात साबित हो गई कि یہ نبی علیہ السلام نے دہرائی، یعنی دہرائی کا مطلب کہ قضا ادا کری اور صحابہ کرام نے قضا ادا کری، تو پھر ہمارے یہ توبہ جو ہے کنفرم ہو گیا کہ خالی توبہ کر دینے سے وہ معاف نہیں ہو گئیں، ختم نہیں ہو گئیں، بلکہ ان کی قضا ہمیں بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو دوسرا سوال کا دوسرا جواب جو ہے، یا جواب کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ قضا کرنا جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اب تیسری بات جو کہ اصل مسئلہ ہے سارا کا سارا، تیسری بات جو ہے نا وہ اصل مسئلہ ہے، باقی دو تو اتنے بڑے مسئلے تھے نہیں، ٹھیک ہے نا. تیسرا مسئلہ یہ ہے اس سوال کے اندر کہ کچھ سکالرز ہیں، ٹھیک ہے، یا سکالرز کی ایک جو ہے وہ سمجھنا ہے کہ ایک کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے، جو کہ قضائے عمری کو بدعت قرار دیتے ہیں. قضائے عمری کیا مطلب؟ کہ ایک شخص جو ہے نا وہ بالغ ہونے کے بعد وہ دیندار نہیں تھا، دنیا دار تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، جیسے بہت سارے لوگ ہیں آج کل نمازیں نہیں پڑھتے بالکل بھی، ٹھیک ہے نا. تو 5 سال اس نے نمازیں پڑھی نہیں، 10 سال اس نے نمازیں پڑھی نہیں، یا خالی ایک آدھ پڑھ لی اور عید کی نماز پڑھ لی، کوئی اس کو لے کے چلا گیا تو اس نے پڑھ لی، کہیں پہ کسی نے کہہ دیا تو اس نے پڑھ لی، ورنہ نہیں پڑھتا تھا نماز، نماز ہی نہیں تھا. 10-20 سال اس طرح سے گزر گئے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کو نیکوں کی صحبت ملی، اس نے کوئی بیان سنا، اس نے کوئی کتاب پڑھی، اس نے توبہ کر لی، اب جو ہے نا وہ اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، ٹھیک ہے نا. اب اس کو اپنی باقی ماندہ پچھلی زندگی کے اوپر جو ہے وہ بڑا افسوس ہے کہ میں نے نمازوں کے بغیر زندگی گزاری، بڑا نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ اب تو نمازیں پڑھ رہا ہے، اور اب اس کی کوئی نماز اگر کسی وجہ سے چھوٹ جاتی ہے تو اس کی وہ قضا کر لیتا ہے حدیث کے مطابق، ہے نا، کہ بھائی قضا کری تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو یہ بھی قضا کر لیتا ہے. آنکھ لگ گئی، کوئی اور وجہ بن گئی، قضا پڑھ لیتا ہے. لیکن جو پچھلی زندگی کے 10-12 سال اس نے نماز نہیں پڑھی ہے، کیا ان کو بھی دہرانا، یعنی کیا ان کو بھی پڑھنا بطور قضا کے، کیا یہ بھی اس کو چاہیے یا یہ اس کو نہیں کرنے کی ضرورت ہے؟ بلکہ ان حضرات کے مطابق تو اگر وہ یہ کام کرے گا، پچھلی زندگی کی نمازوں کو قضا کرے گا، تو یہ نیکی تو دور کی بات، یہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، بدعت بن جائے گا، اور بدعت گناہ کبیرہ ہے. یہ ہے اصل مسئلہ جو کہ سوال پوچھنے والے نے اصل میں ان کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، صحیح سمجھا آپ کے سوال کو، ٹھیک ہے. گناہ معاف ہو جانا وانا والا مسئلہ نہیں، اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ پرانے والے جو گناہ ہے نا، پرانے والے جو یہ گناہ کبیرہ ہے، نماز اور روزے قضا کرنے والا، اس کو میک اپ کرنا جو ہے قضاء عمری کی شکل میں، یہ بدعت ہے یا یہ ایک مستحسن بات ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب جو ہے نا وہ علماء یہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ اجماع امت سے، یعنی میجورٹی آف دا علماء، اہل سنہ والجماعت کے جو علماء کرام ہیں نا، ان کا اجماع اس بات کے اوپر ہے کہ یہ نماز جو ہوتی ہے، جیسے کہ پیچھے ہماری کلاسز کے اندر بھی یہ بات ہو چکی کہ یہ فرض جو ہوتے ہیں نا ہمارے اوپر، یہ فرض جو ہیں یہ قرض ہوتے ہیں. جس طرح سے کوئی قرض، مالی قرض ادا کرنا ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے یہ قرض جو ہیں یہ ادا کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب جب آپ نے کسی کا قرض مارا ہوا ہے، وقت پر ادا نہیں کیا آپ نے کسی کا بھی، جیسے آپ نے کسی شخص سے قرض لیا 10 لاکھ روپے، اور اس سے وعدہ کیا تھا کہ جی 1 سال میں میں نے آپ کا قرض ادا کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا وقت کیا ہو گیا؟ موقوت. یہ قرض جو ہے وہ موقوت ہو گیا کہ 1 سال کے اندر اس کو ادا کرنا ہے. اب آپ نے ادا نہیں کیا، رائٹ، اور پھر آپ نے جو ہے نا وہ اس کی قضا بھی نہیں کری کہ جی چلے بھائی 1 سال میں ادا نہیں کر سکا، 6 مہینے لیٹ کر کے جا کے اس کو ادا کر دیا، 2 مہینے لیٹ ادا کر دیا، قضا کر لی، ادا تو ہو گیا نا، بطور قضا کے ادا ہو گیا. نہیں، آپ نے کہا جی وقت گیا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، رات گئی بات گئی، ہے نا، وہ قرض ہی کیسا جو ادا کر دیا جائے، हमारे एक अंकल कहा करते थे, वो वादा ही कैसा जो पूरा कर लिया जाए, है ना। यानी हम तो वादा करते हैं ना पूरा करने के लिए, उसी तरह कर्ज लेते हैं ना अदा करने के लिए, है ना भाई। ये हमारा कल्चर बन चुका है आजकल अनफॉर्चुनेटली। तो इस तरह की सोच थी कि भाई कर्ज वर्ज कोई अदा नहीं करना। तो अब जो है ना 10 साल गुजर गए इसके अंदर, आपने उसको अदा भी नहीं किया, बात आई गई हो गई। अब 10 साल के बाद जो है ना वो आपको बड़ा फील हो रहा है कि भाई ये तो मैंने बड़ा गलत किया और मुझे बड़ी नदामत है इसके ऊपर, तो चलो मैं उस शख्स से जाकर के माफी मांगता हूँ। ठीक है, तो अब आप जाकर के उससे जो माफी मांगते हैं ना, तो भाई माफी मांगना जो है ना वो कजा के साथ मामला ये है कि माफी तो आप उससे मांग लेंगे, माफ भी वो कर देगा, लेकिन यानी आपकी इस गलती को माफ कर देगा, लेकिन जो कजा है ना उसको अदा करना होगा, कजा को अदा करना होगा। ठीक है, तो इसी कयास के ऊपर, इसी बात पर कयास करते हुए इजमाए उम्मत ये है कि नमाजें भी जो है ना ये मौकूत कर्ज है। यानी एक वक्त में आपने अदा करना होता है फजर की नमाज, फिर एक वक्त होता है दिन का जिसमें जोहर की नमाज अदा करनी होती है, असर की, मगरिब की, इशा की, ये मौकूत कर्ज है हमारे ऊपर, ये अदा कर देते हैं वक्त के अंदर तो बिल्कुल सही काम हो गया, और जब वक्त गुजरने के बाद अदा करते हैं तो वो कजा हो गई। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ही एहसास नहीं है इसका और 10-12 साल भी गुजर गए फिर आपको एहसास होता है, आप अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, तो तौबा करने के बाद भी इनकी अदायगी की फिक्र हमें करनी है। ठीक है ना, तो ये जो अदायगी की फिक्र करना है ये बिदअत नहीं होगी, क्योंकि कजा नमाज़े नबी अलैहिस्सलाम से भी साबित है, तो हदीस से भी साबित है ना, नबी अलैहिस्सलाम साबित है, हदीस से भी साबित है। और दूसरी चीज ये है कि भाई हमारे दीन के अंदर जो शरीयत के उसूल या शरीयत जो 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 की जो जो सोर्सेज हैं हमारे दीन के अंदर, शरीयत के जो सोर्सेज हैं कि जिनसे कि आप शरीयत के उसूल अखज करते हैं, वो सोर्सेज सिर्फ कुरान मजीद की आयात नहीं है बल्कि हदीस मुबारका भी है ना भाई। जैसे कि अभी बात हो रही है कि हदीस से साबित है, हदीस से साबित है, तो भाई कुरान मजीद की आयात से साबित है और हदीस से साबित है जो बातें वो भी शरीयत का हिस्सा है ना। तीसरी चीज भी है ना जो कि सब मानते हैं, ये गैर मुकल्लदीन भी मानते हैं इस बात को, अहले हदीस जो अपने आप को कहते हैं वो भी मानते हैं, सलफी जो अपने आप को कहते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि भाई इजमाए उम्मत, उम्मत के उलमा का इजमा, ये भी शरीयत के माखज में से है। ठीक है, तो भाई जब इजमाए उम्मत इन दलाइल की बुनियाद पर हो गया कि ये जो कजाए उमरी की नमाजें हैं ये बिदत नहीं है बल्कि ये एक मुस्तहसन चीज है, अच्छी बात है कि आप अल्लाह का ये कर्ज अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है, तो इजमाए उम्मत से कजाए उमरी साबित हो गई, बेशक कुरान की आयात से साबित नहीं हुई और हदीसे यानी सहीहा से साबित नहीं हुई, कजाए उमरी वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कजाए उमरी वाला कॉन्सेप्ट साबित नहीं हुआ, लेकिन इजमाए उम्मत से तो साबित हो गया ना, और इजमाए उम्मत जो है वो माखिज़े शरीयत में दाखिल है। ठीक है, तो जब वो माखिज़े शरीयत में दाखिल है, अब हमें क्यों हर वक्त तकलीफ होती रहती है कि कजाए उमरी बिदत है, कजाए उमरी फलानी है, नहीं कि कोई जरूरत है कजाए उमरी पढ़ने की। भाई आप इसको एक कजा उतारने की नीयत से करें, राइट, बस। ठीक है, अब ये जो चंद उलमा है ना जो कि मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं, भाई अगर आप उनको अपना शेख मानती हैं, आप उन्हीं को अपना रहबर मानती हैं, तो फिर आप उन्हीं की मान करके चलें, आप बार बार हमसे मत पूछा करें ये बातें। ठीक है ना, यानी आप इधर भी सुनती हैं, यहां पर भी आपने क्लास लेनी होती है, यहां पर भी सुनना होता है, और फिर हर वक्त जो है वो उनको भी सुनना होता है, तो भाई यू आर बेसिकली गोइंग टू ऑलवेज रिमेन कंफ्यूज, ये तरीका नहीं है दीन हासिल करने का कि आप हर वक्त जो है ना इंटरनेट के ऊपर ब्राउज करती रहें और जिसका लेक्चर आपको अच्छा लगे उसका लेक्चर आप सुनना शुरू कर दें, ये तरीका है ही नहीं दीन का हासिल करने का। यू हैव टू पिक योर स्कॉलर्स
اور آپ ان اسکالرس کے ساتھ لگے ان پر پورا اعتماد کریں. اتنا اعتماد ہونا چاہیے آپ کو اپنے اسکالرس کے اوپر کہ قیامت کے دن آپ ان کو آگے پیش کر سکیں کہ اے اللہ میں نے ان کی مان کر کے عمل کیا تھا جو بھی کیا تھا, اور جو عمل میں نے نہیں کیا تھا نا ان کی مان کر کے میں نے وہ عمل نہیں کیا تھا. ایسے اسکالرز ہونے چاہیے کہ جن کو کہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکیں, ٹھیک ہے نا. یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر براؤز کر کے جو ہم اپنے اسکالرز ہر وقت روٹیٹ کرتے رہتے ہیں نا اپنے اسکالرز انٹرنیٹ بیسڈ, یہ ان کے ساتھ ایسا ہمارا تعلق نہیں ہوتا کہ ہم قیامت کے دن ان کو اپنے آگے سامنے پیش کر سکیں, کیونکہ ان کی ہم ہر بات مان نہیں رہے ہوتے. تھوڑی سی بات اس انٹرنیٹ اسکالر کی مان لی, تھوڑی سی بات اس انٹرنیٹ اسکالر کی مان لی, تھوڑی سی بات اس انٹرنیٹ اسکالر کی مان لی, ہے نا. تو اللہ کے سامنے جب پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ ہم کیا کرتے پھر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. اللہ تعالیٰ کا آگے سے جواب یہ آئے گا, اچھا اس کی یہ بات تم مانتے تھے وہ دوسری تو نہیں مانتے تھے, اور دوسری بات جو ہے تم اس کی مانتے تھے اس کی تیسری تو نہیں مانتے تھے, اور تیسری تم اس کی مانتے تھے چوتھی تو اس کی نہیں مانتے تھے, ہے نا. تو کیسے ایسے اسکالر کو ہم آگے پیش کریں گے جن کی ہم خود اپنے نفس کی بنیاد پر پک اینڈ چوز کر رہے ہوتے تھے ہر وقت, ان کی یہ مان لی ان کی وہ مان لی ان کی وہ مان لی. تو بھائی ہو از دا فائنل اتھارٹی ہیئر؟ اسکالر تو نہیں ہے یہاں پر, اسکالر کی تو آپ نہیں مان رہے, آپ تو بیسیکلی اپنے نفس کی مان رہے ہیں نا. آپ کے نفس کو جو چیز سمجھ میں آتی ہے اس کو آپ پک کر لیتے ہیں, جو چیز سمجھ میں نہیں آتی تو نہیں پک کرتے. یہ تو اعتماد علی النفس سے ہوا, رائٹ. تو جو بھی اس قسم کی حرکت کر رہا ہوتا ہے نا, ادھر سے وہ سن لیا, ادھر سے وہ سن لیا, ادھر سے وہ سن لیا, جو اچھا ہاں بھی سبھی اچھی باتیں کرتے ہیں, میں کبھی ادھر سے سن لیتی ہوں, میں کبھی ادھر سے سن لیتا ہوں, میں کبھی ادھر سے سن لیتا ہوں, سبھی اچھی باتیں کرتے ہیں. ہاں بھائی سبھی اچھی باتیں کرتے ہیں, ابھی دو چار نام لیں گے تو پتا چلے گا اچھا وہ بھی اچھی باتیں کرتے ہیں. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب بھی بہت بڑے اسکالر تھے ملعون, وہ بھی بہت بڑا اسکالر تھا. تو جب سارے اسکالر اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ ملعون وہ بھی بڑی اچھی باتیں کرتا تھا, اس کے مطلب ہے رائٹ. تو یہ تو جملہ ہی غلط ہے نا, یہ سبھی اچھی باتیں کرتے ہیں اس وجہ سے میں سبھی کی بات سنتی ہوں, جو اچھا لگتا ہے اس کو میں کر لیتی ہوں. کس کو اچھا لگتا ہے؟ نفس کو اچھا لگتا ہے. اور نفس پرستی, یہ نفس پرستی کہلاتی ہے, نفس پرستی خدا پرستی کا اپوزٹ ہے, یہ نہیں چلے گا قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. تو اس براؤزنگ والا دین جو ہے نا, اس دین سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نفس پرستی ہے. جب آپ نے ایک کو پکڑ لیا, اب آپ ادھر ادھر جا کر کے نہ سنیں کہ ادھر بھی کلاس لینا شروع, ہر وقت ادھر بھی کلاس لے رہی ہوتی ہیں, ادھر بھی ہر وقت جو ہے وہ سن رہی ہوتی ہے. یا تو ادھر ترک کریں اور ادھر جڑیں, یا ادھر ترک کریں اور ادھر جڑیں, تاکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے آپ کسی کو پیش کر سکیں, میں نے اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ ان سے لی تھی, ایسا ان سے میں نے اپنے دین کی انڈرسٹینڈنگ لی. آپ کو اگر اس طرح کی باتوں کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا ہے ان سے پوچھئے. میں تو مقلد تھی, میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں خود مجتہد بن سکوں, میں خود جو ہے وہ دین کی گہرائی حاصل کر سکوں. میرے بچے اتنے زیادہ تھے, میرے گھر کی مصروفیات اتنی زیادہ تھی, میرے اوپر دوسری ذمہ داریاں تھیں, میں عالمہ اور فقیہ نہیں بن سکتی تھی. تو اللہ میری مجبوری تھی, مجھے انہی کو لے کر کے فالو کرنا تھا, انہی سے اپنی انڈرسٹینڈنگ لینی تھی. تو اللہ اگر کوئی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے بھی جو کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا تھا, تو اللہ آپ ان سے پوچھ لیں. بالکل ایسا ہی معاملہ ہے, بالکل ایسا ہی معاملہ ہے, رائٹ. کہ ہم مقلد ہیں, ہم جب خود فقیہ نہیں بن سکتے ہمیں کسی کی تقلید کرنی ہے, لیکن کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی واقعی ہم نے تقلید کری. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کی تقلید کری ہے. نفس کو نہیں پیش کر سکیں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ میرے نفس سے پوچھے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں, نفس کو جہنم میں ڈالیے, مجھے تو جنت میں ڈالیے, میں نے تو نفس سے پوچھ کر کے اپنی زندگی گزاری تھی. نفس نہیں چلے گا ادھر, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہماری کنفیوژن ہے جو کہ ختم نہیں ہو کر کے دیتی, اس کی وجہ یہی ہے. وی آر آلویز پکنگ اینڈ چوزنگ, وی آر آلویز براؤزنگ اراؤنڈ, کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں, کبھی کسی سے بات کر رہے ہیں, کبھی کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں, کبھی کسی سے کچھ پوچھ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس سے توبہ کر لینے کی ضرورت ہے, ورنہ زندگی ضائع ہو رہی ہے, اور کسی دن ایک دم سے ختم ہو جائے گی, اور مہلت ہی ختم ہو جائے گی ہمارے پاس اس سے توبہ کرنے. پھر وہی نفس پرستی کی سچویشن کے ساتھ ہی ہم قبر میں چلے جائیں, ٹھیک ہے. کیا قضا کرنے سے عذاب قبر معاف ہو جاتا ہے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے آپ قضا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ کوشش کر رہا ہے میرا قرض ادا کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کے اوپر اس کے عذاب کو ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ رحیم کریم ہے, ٹھیک ہے نا. کوشش دیکھتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں, ریزلٹس نہیں, کہ ہاں بھی 40 سال کی نمازیں اس نے قضا کرنی تھی، ادا کرے گا تب معاف کروں گا، 40 سال پورے ہو جائیں گے تب اس کو معافی ملے گی، ورنہ عذاب نہیں. اللہ کا معاملہ ایسا نہیں، ٹھیک ہے نا. شروع کر دیں آج سے قضا کرنا، اور ابھی اگر موت آ گئی، اللہ تعالی رحیم کریم، ہمارے دنوں کی نیت اللہ کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہی واز ناٹ ٹیکنگ می فار گرانٹیڈ، ہی واز ڈوئنگ ہز بیسٹ اور ہر بیسٹ. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب قبر اور سارے عذاب جو ہیں وہ معاف کروا دیتے ہیں. کیا قضا کرنے سے صاحب جی، if he she is not able to finish all qada umri namaz or fast, will Allah subhanahu wa ta'ala forgive the remaining qada fast and namaz because person was trying. Ji, mashallah, ka sawal padhne se pehle hi jawab ho gaya. Maine kisi buzurg se ye suna hai ki aise umre ka koi fayda nahi ki jiske dauran farz namaz qada ho jaye, kyunki nafil ki adaiye ke liye farz gawa diye. Kya ye baat durust hai? Bilkul sahi hai, bilkul durust hai, theek hai na. Ye 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 nafil umre karne ke liye ja rahe hain aur farz jo hai wo roze. Abhi safar ke andar jo hai na wo to roze nahi, roze maaf ho jate hain. Bhai aap safar kar kyun rahe hain, عمرہ کرنے کے لیے سفر کر رہے ہیں نا، تو بھائی آپ سفر کرنے کے لیے عمرہ کر رہے ہیں، اور سفر بھی ایسا ہے ایئر کنڈیشن گاڑی میں جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن ایئر کرافٹ میں جاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ اس سفر کو بہانہ بنا کر کے فرض روزہ چھوڑ رہے ہیں. کس لیے؟ نفل عمرہ کرنے کے لیے. نہیں، علماء اس کی شدید مخالف ہے کہ ابھی جو رمضان میں سارے بھاگے چلے جا رہے ہیں نا عمرے کرنے کے لیے، بے شک جائیں عمرے کرنے کے لیے، لیکن فرض روزہ چھوڑ کر کے مت جائیں، ٹھیک ہے نا. وہ کوئی اور سفر جو آپ کا ہوتا ہے، کاروبار کے لیے سفر ہے. ہاں، کاروبار کے لیے سفر عجیب بات، کیونکہ وہ ایک دوسرا تقاضا ہے، کاروبار ایک تقاضا ہے، رشتے دار سے ملنے کا ایک تقاضا ہے، تو وہ سفر جو ہے نا وہ ایک الگ سفر ہے. اور یہاں پر دیکھیں عقل کتنی استعمال کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ جو عمرے والا سفر ہوتا ہے یہ خالصتاً دینی سفر ہے، دین کے اندر پرائیورٹیز، دینی پرائیورٹیز رکھنی پڑیں گی. فرض نمبر 1، نفل اس کے بعد، ٹھیک ہے نا. جبکہ دوسرے معاملوں میں دینی پرائیورٹیز نہیں ہے، وہ آپ سفر کر رہے ہیں، رشتے دار سے ملنے کے لیے سفر کر رہے ہیں، اور یعنی کاروبار کے لیے سفر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر روزوں کو معاف کیا، فرض روزہ معاف کیا، ٹھیک ہے. تو دینی سفر کوئی تھوڑی ہے وہ. جب دینی بات ہو رہی ہے تو دین کے اندر تو پرائیورٹیز کو سامنے رکھنا پڑے. دین کے اندر آپ پرائیورٹیز کو میس اپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. اگر کوئی نماز پڑھے پچھلے زندگی میں، اب جا کے پتا چلا کہ رونگ پڑھی تھی، تو کیا یہ بھی قضاء عمری میں جائیں گی؟ جی ہاں، یہ بھی قضاء عمری میں جائیں گی، ٹھیک ہے. انفارچونیٹلی ایک مسئلہ ذہن میں آ گیا، اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا آپ سے معذرت کے ساتھ، کہ کیا کہتے ہیں اس کو، حالت جنابت، کہ کب انسان جو ہے وہ جنابت کی حالت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، چاہے آپ وضو کر لیں، لیکن جب تک جنابت سے نکلنے کا غسل نہیں کرے گا، جس کو غسل جنابت کہتے ہیں، اس وقت تک جنابت کی حالت سے نہیں نکل سکے گا. تو خالی وضو کر کے نماز پڑھ لی، نماز ہوئی نہیں. بہت سے نوجوان ایسے ہیں کہ جو کہ جنابت کی حالت میں چلے جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، مشت زنی جس کو کہتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے جنابت کی حالت میں چلے جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا یہ والا مسئلہ، تو غسل جنابت کیے بغیر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. کئی کئی سالوں کی ایسی نمازیں ہو جاتی ہیں، ایسی ساری نمازیں جو ہیں وہ زیرو، ٹھیک ہے نا. اب ان نمازوں کی قضاء عمری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے جی. سنے وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام.